सर्वप्रथम मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वराहवीरं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरायरुण बिम्ब फलाधरोष्ठात् वृणेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। वैराग विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधीर्यस् तमहं प्रपद्ये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 32। श्री शुक उवाच इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरोदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः कृष्णदर्शनलालसाः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च भाचित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः
पढ़िए
और कोई
वैष्णवी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ और अनुवाद पहला है शब्दार्थ श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इते इस प्रकार जैसा कि ऊपर कहा गया गोप्य है गोपियां प्रगायन्त्य है गाती हुई प्रलपन्त्य है बातें करती च तथा चित्रधा अनेक मनमोहक विधियों से रुरुदुह चिल्लाई सुस्वरम तेजी से राजन हे राजा कृष्ण दर्शन कृष्ण का दर्शन करने की लालसा है लालसाएं अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन इस तरह गाकर तथा अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से प्रकट करके गोपियाँ जोर जोर से रोने लगीं वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत ललायित थीं पीछे से बोलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन इस तरह गाकर तथा अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से प्रकट करके गोपियाँ जोर जोर से रोने लगीं वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत ललायित थी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के चाय सर्वप्रथम मैं परम पूजनीय त्रिकाल वंदनीय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूं। तत्पश्चात श्री श्री निताय गौर सुंदर जी, अखिल विश्व के ब्रह्मांड नायक भगवान श्री श्री राधारास बिहारी जी एवं श्री श्री सीताराम जी के चरणों में भी हम सत्तह नमन करते हैं। इसके पश्चात आप सभी सीनियर एवं जूनियर वैष्णवों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते हुए अब हम आपका ध्यान भगवान श्री कृष्ण के राजपंचो अध्याय की तरफ ले चलते हैं, जिस लीला को हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। राजपंचो अध्याय श्रीमद् भागवत के इस दसम स्कंद में नवे अध्याय है, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसमें जो पांच अध्याय हैं 29, 30, 31, 32, 33 इसे रास पंचो अध्याय कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत ये जो रास पंचो अध्याय है, समझिए भगवान के प्राण हैं। इसमें भगवान एवं श्रीमती राधा रानी की तथा अन्य गोपियों के विरह वेदना का, विरह भावों का, उलासलीला का वर्णन किया गया है। टेम्पल कमांडर हिज होलनेस हिज ग्रेस हिमगिरी प्रभु बोले कि टेम्पल प्रेसिडेंट का आदेश है, हिज ग्रेस ब्रजहरी प्रभु जी का आदेश हुआ है सीनियर वैष्णवों के द्वारा रास पंचो अध्याय का श्रवण किया जाए, क्योंकि यह ऐसा अध्याय है जिस अध्याय को श्रील प्रभुपाद जी ने माना किया है कि रास पंचो अध्याय ऐसा अध्याय है जिसमें गोपियों के सर्वोच्च प्रेम का वर्णन किया गया है। आप हिंदी में बोलते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं लोवेस्ट टेस्ट हाईएस्ट टेस्ट, हाईएस्ट टेस्ट सर्वोच्च सबसे जो उच्चतर प्रेम है उस प्रेम का वर्णन है, जिस प्रेम को अगर कोई साधारण व्यक्ति सुन ले तो उसके हृदय में विषय विकार उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए इस लीला को भक्तों के बीच में वर्णन करने को कहा गया है, साधारण लोगों के बीच में इस लीला को नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन हिज ग्रेस श्रील ब्रजहरी प्रभु की ऐसी कृपा रही कि नहीं भक्तों के बीच में किया जाए, और चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों से कहे हैं कि ये जो भगवान की जो लीला है बहुत उच्च स्तर की लीला है, और इन लीलाओं को भक्तों के बीच में ही वर्णन करना चाहिए, साधारण लोगों के बीच में नहीं। तो इसमें पांच अध्याय हैं, जो पांच अध्यायों को कहा गया है ये रास पंचोध्याय। पांच अध्याय ये भागवत जी के प्राण है, माने भगवान के प्राण है, मुख्य है। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए, आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर मर जाता है, तो उसी प्रकार से ये देखिए गोपी गीत है, इसमें कोई साधारण तत्वों का वर्णन नहीं है। तो पांच अध्यायों का नाम सुन ले, इसके बाद में फिर हम आपको आज की प्रसंगानुकूल उस शास्त्र पर आप चलाएंगे। पहले अध्याय का नाम है बंसी बजाकर गोपियों का आह्वान करना, आवाहन माने बुलाना और उनके साथ रास विहार प्रारंभ करना। बांसुरी बजा करके भगवान गोपियों को बुलाते हैं। 84 कोश की ब्रज गोपियां इसी अध्याय में वर्णन है। कहीं कहीं 9 लाख गोपियों का वर्णन आता है, कहीं कहीं 30 कोटि गोपियों का वर्णन आता है, कहीं कहीं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी 3 अरब गोपियों का भी वर्णन करते हैं। और उन समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सबसे सर्वप्रिय हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। जो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, अलादनी शक्ति है। बाकी अन्य गोपियां सब श्रीमती राधा रानी की सेवा में माने राधा रानी की सहायता करती है, लीला में सहयोग करती है मिलाने का। तो भगवान बंसी वादन करते हैं, बंसी वादन में जादू भरी है, भगवान की बंसी की कमाल है, भगवान की बांसुरी की ये कमाल है कि अगर वो बंसी बजा दें, जिसके नाम से बंसी बजाएंगे वो बांसुरी उसी को सुनाई देती है। जिसके नाम से आप बजाएंगे तो सबको सुनाई देगी, पर वो जिसके नाम से पुकारेंगे उसी को सुनाई देगी। ये भी जादूगरी है भगवान की। सूची की 84 कोश की ब्रज गोपियों को भगवान बुलाए, ये सब गोपियां अंतरंगा शक्ति हैं भगवान की, कोई साधारण गोपी नहीं। उनको बुलाते हैं, गोपियां आती हैं, गोपियों को भगवान स्वागत करते हैं। ये पहला अध्याय का वर्णन है, हम संक्षिप्त में ले चल रहे हैं आपको, ताकि चित्रपट पूरा हमारे मानस पटल पर आ जाए। गोपियां आती हैं, भगवान स्वागत करते हैं। सारी गोपियां आई, शरद जिन गोपियों को भगवान ने चिरहरण लीला में आश्वासन दिया था, जो गोपियां भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन किया था, देवी के आस कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से गोपियों ने कृष्ण की आराधना की और भगवान पति के रूप में उन्हें मिल गए। तो उन गोपियों से भगवान कहते कि शरद पूर्णिमा जब आएगी तो मैं अगले शरद पूर्णिमा की शरद रात्रि में अब मैं आप सभी के साथ विहार करूंगा। तो अब गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बांसुरी की सहारा लिया, बांसुरी से भगवान ने गोपियों को बुलाया स्वागत की। सारी गोपियां झुंड की झुंड गोपियां आ रही है, बांसुरी से ऐसे भगवान बुलाए कि जैसे गोपी को बांध को भगवान खींच रहे हैं, रस्सी बांध करके खींच रहे हूं, उन लोगों का ऐसा आभास हो रहा है कि हमें कोई रस्सी बांध करके खींच रहा है। जैसे जैसे वो कामकाज में संलग्न थी सबको छोड़ करके वे चल पड़े और आकर के सब मिल रहे हैं। तुमको कैसे मालूम हुआ कि हमको बांसुरी की आवाज सुनाई दी, नाम पुकारे भगवान, गोपियां आ गए। इसके बाद सब गोपियां मिल करके जमुना जी के तट पर आती हैं, वहां मिलती हैं, भगवान स्वागत करते हैं और दर्शन करती हैं भगवान का। भगवान भी गोपियों को दोनों तरफ से मिलन हुआ। इसके बाद भगवान ने पातिव्रत का बखान करते हैं कि स्त्री का धर्म है, पत्नी का एक धर्म है अपने पतियों की सेवा करना। अब दर्शन हो गया ना, मुझसे मिल लिया, दरस परस हो गया, अब आप लोग अपने घर लौट जाइए। अब देखिए गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे निराश हो गए और मुंह कैसे नीचे लटका दें, उदास हो गए। इसके बाद ठहर करके वो बोलते हैं, भगवान सर्वोच्च धर्म का बखान करते हैं, पति पत्नी धर्म का, लेकिन ये गोपियां भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, याद रखिए, कोई साधारण गोपी नहीं है। तो कथा सुनाते हैं भगवान कि सर्वोच्च धर्म क्या है, मैं इस पर ले चल रहा हूं। जैसे श्री राम रूप प्रभु वर्णन कर रहे थे, संक्षिप्त रूप से सुना जाए सर्वोच्च धर्म क्या है, तो भगवान सर्वोच्च धर्म बताते हैं कि एक पत्नी का धर्म है अपने पतियों की सेवा करना, इसलिए तुम लोग लौट जाओ अपने पतियों की सेवा करें। तब गोपियां कहती है, कहानी एक कथा सुनाए भगवान की, एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति कहीं काम करने चला गया था, उसको एक पुत्र था। जब उसका पति काम करके लौटा घर, तो अपने पति की सेवा करने लगे। उसका पति थका हुआ था, सिर को गोद में रख करके सो गया। उसी समय उसका जो लड़का था, छोटा बालक था, खेलते हुए गया और उसके आंगन में अग्नि कुंड था, उसमें जा करके जो हवन किया हुआ था, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वो बालक उस कुंड में गिर गया। पति का सिर गोपी के उस स्त्री के गोद में है, वो सोच रही है कि अगर मैं इनको जगाती हूं तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पत्नी का धर्म है, पतिव्रता स्त्री का धर्म है अपनी पति की सेवा में बाधा ना करना। बालक गिर गया अग्नि कुंड में, आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद उसके पति की निद्रा भंग हुई, तो फिर यह गोपी जाकर के देखती है, उस नारी जाकर के देखती है कि मेरा लड़का का क्या हुआ। जाकर देखती है कि मेरा लड़का अग्नि कुंड में अग्नि के साथ खेल रहा है, बिल्कुल अग्नि उसके लिए शीतल हो गई है, ठंडा हो गई, माने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, उपति की सेवा के, ये है पातिव्रत धर्म, ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव भगवान ऐसे बता रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने घर लौट जाओ और अपने पतियों की, बंधु बांधु की सेवा करो। तब गोपियां बोलती है, वो उत्तर देती है, ऐसे हम भी पतिव्रता की कथा जानते हैं। हमने क्या तो सुनाई भगवान को, कहें कि एक पतिव्रता नारी थे, उसका पति विदेश जाने वाला था, तो पतिव्रता नारी जो है अपने पति के चरण रज को लेती है, रोज उनके चरणों को पखानती थी, चरण रज को लेती थी, चरण रज का पान करती थी। तो पति ने कहा कि मैं तो विदेश जा रहा हूं, मैं साल भर के बाद आऊंगा, तब तक तुम ठीक है कि आप जा रहे हैं तो आपके बिना तो मैं नहीं रह सकती, क्या कि मेरी मूर्ति बना करके मिट्टी की, इसकी सेवा करना। तो उन्होंने व्यवस्था कर दिया, ये सेवा करने लगे। इसके बाद साल भर के बाद जब लौटा पति, आइए पति बोलते, वो पतिव्रता नारी सेवा कर रही थी, तो पूछती है, वो घर में अकेली थी, किवाड़ को बंद करके वो उनकी सेवा पूजन करती थी जो भी है। तो वो पति आए जो बाहर गए थे, तब तो भगवान से प्रश्न करती हैं, कृष्ण से, पतिव्रता नारी के, कहते हैं कि अब ये बताइए कि जो पतिव्रता नारी है, जो अपने पति के मतलब एक मूर्ति बना करके पूजा कर रही है घर में, और उसके असली पति जो है बाहर गए हुए हैं, यदि वो आ जाए और दरवाजा को खटखटाए तो उस पत्नी का क्या धर्म है, दरवाजा को खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, कि इसी मिट्टी की मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, अरे इसमें पूछने की बात है, जब असली पति आ गए तो उनकी सेवा करनी चाहिए ना, कि इस मिट्टी की पुतला की सेवा करने से क्या मतलब है, दौड़ करके किवाड़ खोलना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। तब गोपियों ने पकड़ ली भगवान, क्योंकि बस बस आपने कहा है ना गीता में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापे भो मोक्षे श्यामी मा शुचः। श्रीपाद शुद्ध गोस्वामी ने भी कहा है, श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति सबके स्वामी, पति माने स्वामी रक्षक, सबके स्वामी तो भगवान है और आप कहते हैं सभी धर्मों के आचार्य तो आप ही हैं, धर्मों की स्थापना करने वाले आप हैं, और जब असली पति आ गए तो इन नकली पति की सेवा करने से क्या फायदा है। तो ये तो नकली पति है ना, जितने भी हमारे यहाँ पति हैं ये तो सब मरने वाले हैं, ये तो हाड़ मांस के पुतले हैं, सब जलने वाले हैं, मरने वाले हैं। आप तो कभी मरते नहीं, आप तो असली पति हैं, और आप कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो हम लोग तो सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में आई हैं, तो अब हम लोग को किसके पास विदा कर रहे हैं, बोलिए। अब ईश्वर भगवान की बोलती बंद हो गई, तो फिर भगवान वहां हार जाते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं क्या कि मैंने ऐसे ही तुम लोग की परीक्षा लेने के लिए, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ऐसी बातें कही, देखना चाह रहा था कि तुम लोग का मेरे प्रति प्रेम कैसा है। तो वास्तव में एक बात याद रखें, ध्यान देने की बात, शरीर का पति कोई भी हो सकता है, लेकिन आत्मा, आत्मा के पति कौन है, बोलिए। हाँ, आत्मा के पति भगवान है, पति माने रक्षक। हम शक्ति है, पराशक्ति है, आत्मा पराशक्ति है, इसके पति भगवान है। श्री पति, लक्ष्मी के पति भगवान है, यज्ञ के पति भगवान है, पृथ्वी के पति भगवान है, सबके रक्षक स्वामी भगवान है। तो गुपियां कहती हैं तो हम तो शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है, तो वास्तविक पति तो आप है ना, जब हम आपके शरण में आ गए तो अब मैं कहां जा सकती, इसलिए हम लोग जाना नहीं चाहती। तो यहां भगवान सर्वोच्च दिखाए हैं कि आत्मा के पति हम सब शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। हम भगवान आत्मा है, तो आत्मा के पति, आत्मा के रक्षा भगवान है। हम भगवान के तटस्था शक्ति हैं, शक्ति हैं, और भगवान तो शक्तिमान है, हम पराशक्ति हैं। अपराशक्ति जड़ है, शरीर अपराशक्ति है, पराशक्ति जीव, जीव जिसको कभी मरता नहीं, अमर है, आध्यात्मिक, आत्मा की मरता नहीं है, उसके पति भगवान। तो आत्मा के पति भगवान है, जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए हम लोग, हम सभी आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, हम कहाँ जाएं। तो भगवान ने स्वागत किया और गोपियों की मनोकामना को पूर्ण, उनके साथ रास किया, रास किया, रास में लीला, लेकिन वहां गोपियों को अभिमान आ गया थोड़ा सा, गोपियों के साथ भगवान रास क्रीड़ा करने लगे, नृत्य करने लगे, तो उसके बीच से अंतर्धान हो गए भगवान, मान आ गया थोड़ा कि अब हम लोग विश्व की माने सुंदरी नारी हैं, अब हम लोग से बढ़कर कोई नहीं है, इतना उनके अंदर अभिमान आ गया। तो उनके अभिमान जब आ गया तो भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद पुनः अदृश्य हो जाते हैं, फिर राधा रानी मिलते हैं, तो वो भी मान कर जाती हैं। मान करने का मतलब रूठ जाना, ये हायर मतलब उच्च प्रेम का वर्णन है। रूठ मनाने में भी आनंद आता है, याद रखिए, वो भी उलाहना देती हैं, सब कुछ करती हैं, चले जाते हैं भगवान। फिर वो गोपियां खोजते हुए पहुंचती हैं राधा रानी के पास, राधा रानी के बीच ही भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, सब मिल करके भगवान को खोजती है, यहां तक इसमें वर्णन है। तो सर्वोच्च धर्म है भगवान की सेवा, इसमें भगवान ने बताया। दूसरा अध्याय है श्री कृष्ण के विरह में गोपियों को वन वन में भटकना। अब जब भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए तो गोपियां आप खोजने लगी, भटक रही है वन वन में। और इसके बाद में फिर तीसरा अध्याय गोपी गीत, जिसको कल हिजगर रामरूप ने वर्णन किया था, गोपी गीत। तो जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपी गीत जो है, गोपियों ने भगवान को खोजते खोजते थक गए, तो अंत में यमुना जी के तट पर पहुंचती हैं और वहां उन्होंने गोपी गीत गाया, एक गीत गाया, बहुत सुंदर गीत, और विरह का गीत है। तो उस गीत को सुन करके भगवान पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो आज का जो अध्याय है चौथा दिन, भगवान को प्रकट होकर गोपियों को संत्वना प्रदान करना, आज के अध्याय में वर्णन है। पुनः मिलाप, भगवान प्रकट होते हैं फिर मिल जाते हैं, तो आज पूरा पुनः दोबारा मिलन होता है। तो आज मिलन का अध्याय है, और आज की अध्याय में गोपियां भगवान को बताते हैं, पूछती हैं, प्रश्न पूछती हैं, याद रखिए। तो अब हम आपको इस श्लोक की तरफ ले चलते हैं। कैसे गोपियां मिलते हैं, तो पहले याद रखें गोपी का अर्थ आप समझे, गोपी कहते हैं किसको, तत्व को समझते हुए हम सभी को चलना है। गोपी है कौन, गोपी का मतलब क्या होता है, गोपी का अर्थ गोपन भी होता है, जो अपने प्रेम को छिपाने वाली है, जो छिपा करके रखती है, उसको हम गोपी बोलते हैं। गोपन माने गुप्त बातें हैं, हृदय में गुप्त रखने की वस्तु जो हृदय में प्रेम को छिपा करके रखती हैं, कहते हैं उसको हम गोपी बोलते हैं, और श्री कृष्ण की स्वरता अपने प्रेम को गुप्त रखने के कारण गोपी को गोपी कहा जाता है। दूसरी बातों में गो माने होता है इंद्रियां, और पी माने होता है पान करना। जो अपने इंद्रियों से गोविंद के रस का, सौंदर्य का रसपान करें, उसको भी कहते हैं गोपी। तीसरे शब्दों में गोपी शब्द का अर्थ है, श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने किया है, कि श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र लालसा का नाम है गोपी। तो भगवान मिल करके फिर अदृश्य हो जाते, अंतर्धान हो गए, तब गोपियों की तीव्र लालसा बढ़ गई, कैसे हमें इनका दर्शन होगा। ये बीरा भाव है, रो रही है बीरा भाव। तो याद रखिए, अब ये समझिए, यहां गुप्त धातु से गोपी शब्द बना है, लेकिन रक्षण करने के अर्थ में आता है गोपी का। तो जो गोपी हैं, गौड़ हैं, श्री राधा जी का काय भी स्वरूपा है। तो अब ये श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, ते गीत गाती है। भगवान को यदि मिलना हो तो कैसे भगवान मिलेंगे? देखिए, बीरह की गीत है, बीरह वेदना को सबसे सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। गोपियां गीत गाती हैं, रोती हैं, क्रंदन करती हैं। कल सुने आप, तो जब गोपियों ने गीत गाया तो भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो उनका बहुत सुंदर स्वरूप था, उस स्वरूप को देख करके गोपियां आकर्षित हो जाती हैं, भगवान को चारों तरफ से घेर लेती हैं। सुंदर स्वरूप था, सुंदर, भगवान को मधुराष्टकम कहा गया है, अति सुंदर है, उनका शरीर जो है दिव्य है। भगवान की जो चार गुणों की विशेषता बताई गई है, 64 गुणों में से, जो रूप माधुरी है, जिसको देखने से कभी तृप्ति नहीं होती है, मन करे कि हम इनको देखते रहे, दर्शन करते जाएं, और हमेशा नवीन लगे कि इन्होंने हमेशा नवीन सुंदरता देखने, जिसको देखने से कभी तृप्ति न हो, वो रूप माधुरी भगवान का। भगवान उतने सुंदर है, सुंदर श्याम, सुंदर वर लीला, सुंदर बोलत वचन रसाल, भगवान अति सुंदर है। नख से सिख तक सुंदरता का वर्णन किया गया है, और भगवान पीत वर्ण धारण किए थे, पीतांबर धारण किए हुए थे, अति सुंदर। भगवान को सौंदर्य को देख करके यहां वर्णन है, गोपियां उनको जब प्रकट हुई तो घेर ली चारों तरफ से, और घेर करके अब उनसे वो बात करते हैं। तो उसका वर्णन आता है इसमें, और हम चीज से वर्णन करते हैं थोड़ा, हम चाहे तो इसको 10 मिनट में भी वर्णन कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन तत्व को समझते हुए चला जाए। दर्शन करने की लालसा है, तो अब देखिए, यहां गोपी बनना कोई साधारण बात नहीं है, मीरा वेदना है, शुद्ध है, शुद्ध प्रेम का नाम है गोपी, जो श्रीमती राधा रानी है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ गोपी है, जिसको भगवान ने स्वयं शुद्ध प्रेम से रचा है। आप वैष्णव गीत में गाते हैं ना, कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निध्यम नित्यम, गाते हैं ना ऐसा, राधा कृष्ण गतिरमम, कृष्ण के शुद्ध प्रेम से राधा जी रची गई है, शुद्ध प्रेम। और भगवान भी का जो शरीर है दिव्य है, शुद्ध प्रेम से रचे गए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लीला करने के लिए भगवान एक से दो बने, शुद्ध प्रेम की बात कही जा रही है, भौतिकता की बात नहीं है, वहां विषय रस की तनिक भी गंध नहीं है। भगवान गोपियों के साथ, गोपियों के यहां प्रकट होते हैं, ठीक है, लीला का उनके साथ नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, भागवत जी वर्णन है कि देखो, भगवान गोपियों के साथ आनंद लिए, तो आप भी बोल सकते हैं कि हम भी तो संसार में स्त्रियों के साथ आनंद ले सकते हैं, ईश्वर प्रभुपाद जी व्याख्यान देते हैं, देखो वो जो गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, वहां पर मैथुन नहीं है, वहां मैथुनागार नहीं है, वो आनंद दिव्य आनंद है, शुद्ध आनंद है, शुद्ध प्रेम की बात है, और ये जो संसार है ये विषयानंद की बात है। अगर तुम भी चाहो जैसे भगवान कृष्ण युवतियों के साथ, गोपियों के साथ आनंद लेते हैं, और तुम सोचो कि जिसे भगवान किए वैसे हम भी यहां पर आनंद लें, हम भी युवतियों के साथ आनंद लें, तो क्या बात है? क्योंकि यहां जो तुम आनंद ले रहे हो, जो ये विषय आनंद है, विषय आनंद हो तुम हो, ये वास्तविक सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है, नश्वर सुख है, और वो जो सुख है वहां पर मैथुन नहीं है, तो ये उस शुद्ध प्रेम का सुख है। यदि तुम आनंद लेना चाहते हो, युवतियों से मिलना चाहते हो, तो भगवान की भक्ति करो, एकदम जप करो, सही ढंग से भक्ति करो, और भक्ति करने से तुम उस लोक में जब पहुंचेंगे तो तुम भी युवक युवतियों के साथ आनंद ले सकते हो जैसे भगवान कृष्ण आनंद ले रहे हैं। वो दिव्य आनंद है, भौतिक आनंद नहीं है। तो इसलिए रासलीला जो है पूरा सरोज प्रेम का वर्णन है। तो अब आगे की बात सोचिए कि अब रास किसको कहते हैं, प्रश्न आएगा। रास की है ना भगवान, रास का मतलब नृत्य, तो रास क्या चीज है इसको देखिए। भौतिक जगत में भगवान ठीक है युवक युवतियों से आनंद लेते हैं, वो दिव्य प्रेम की बात है, उसी का तो वर्णन सुनने को आज मिलेगा। तो रास का मतलब क्या, जिसके साथ भगवान रास किया। रसो, रस को रास कहते हैं, याद रखिएगा। रसो वैसा है, भगवान का एक नाम है रसो वैसा, भगवान रसों के खजाना है। रसो वैसा जिसमें केवल रस ही रस है, उसको हम रसो वैसा कहते हैं, अर्थात रस को रास कहते हैं। रसेना सह उत्सव रासोत्सव है, तो याद रखिए जीवन का भगवान के साथ क्रीड़ा करना ही रास है। तो इसमें वर्णन है, रासा नाम समूह रास, विभिन्न रसों के समूहों को रास कहते हैं। तो रस क्या चीज है? वैसे रस रस रास शब्द कहते हैं कि प्राय इसे संसार में प्रचलित है, बहुत से नर्तकियों के साथ एक पुरुष नाचता है तो उसको हम रास कहते हैं। लेकिन हमारे आचार्य गण कहते हैं कि रसा नाम कदम्ब रास, रसों का समुदाय रास कहा जाता है, विशेषकर रासलीला, नाचना, गाना, आलिंगन करना, चुंबन करना आदि का नाम है रास। तो गोपी जन को तृप्त करने के लिए भगवान रास क्रीड़ा किए, तो उनका जो आनंद है, जो मैंने छिपना है, हाँ बोल दिए, तो रास रस शब्द से रास बना है, रास। तो भगवान के अंदर तो सारे रस हैं। कौन कौन से? जैसे ऐसे इंद्रिय सुखों को कहते हैं कि परिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। हर एक मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है, हमको आनंद मिले, आनंद लेना चाहता है, तो इंद्रियों को माने सुख प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम रस कहते हैं। तो सारे जीव ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत तक सभी इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम रस प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे रस कहा जाता है। तो याद रखिए श्री प्रभुपाद जी भागवत के प्रथम स्कंद में, प्रथम अध्याय में, तीसरे श्लोक में 12 रसों का वर्णन किए हैं। 12 रसों का, भगवान में 12 रस होते हैं। कौन कौन? रौद्र रस माने क्रोध रस, वो भी एक रस है जिसमें आपको मिलेगा अभी आस्वादन करने को लिए। गोपियां कटाक्ष भरी दृष्टि से भगवान को देखती हैं मिलने में, अभी वर्णन करूंगा लेकिन मैं इस रसों को दर्शा रहा हूं। ऐसे रौद्र रस, क्रोध रस, अद्भुत रस, आश्चर्य, श्रृंगार रस, दाम्पत्य प्रेम, हास्य रस, प्रहसन, हंसी मजाक करना, वीर रस, दया रस, करुण रस, दास्य रस, सख्य रस, मैत्रीभाव का रस, भय रस, भयानक, विभत्स रस, और शांत रस, और वात्सल्य रस। ये 12 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। तो इन समस्त रसों का जो समग्र सार है, जिनको प्रेम कहा जाता है, तो भगवान के अंदर सारे रस हैं। इसलिए उनका नाम है रसो वैसा, रस के खजाना है। तो यदि आप वास्तविक आनंद लेना चाहते हैं, वास्तविक इंद्रियों का को सुख पहुंचाना चाहते हैं, आनंद लूटना चाहते हैं जिससे भगवान गोपियों के साथ आनंद लेते हैं, तो इसके लिए आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और आप जो सांसारिक रस लेते हैं, ये विषया रस है, विषय रस है, क्षणिक सुख है, नश्वर सुख है, और वो दिव्य सुख है। वैसे करने के लिए आप भगवान की भक्ति करें, जप करें, इसके बाद जप के माध्यम से शुद्ध होकर के आप फिर भगवत धाम पहुंचेंगे, तो आप उस आनंद को ले सकते हैं। तो उसको हम दिव्य रस बोलते हैं, भक्ति रस दिव्य रस कहा जाता है। ऐसे आप संसार में विषय रस को ले रहे हैं, तो ये रस का वर्णन है। तो अब आइए, वो जो आनंद है भगवान के धाम में कहीं नहीं, देवी देवताओं को भी नहीं प्राप्त है। तो भगवान गोपियों के साथ रास किए, 30 कोटि गोपियां हैं, करोड़ है, कहीं कहीं वर्णन है, और 3 अरब का तो वर्णन इसी अध्याय में 3 अरब का वर्णन करते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। अपने 7 गोपी जो है उसमें से प्रधान है, उनका नाम भी बताते हैं, वर्णन है उन गोपियों के नाम का भी वर्णन है इसमें। तो इस प्रकार से कहने का भाव है कि आनंद तो सभी लेना चाहते हैं। तो जो वंशीवट पर भगवान ने, जमुना जी के तट पर एक वंशीवट है जहां पर भगवान ने बांसुरी बजाई थी और कोटि कोटि गोपियों को भगवान ने बुलाया था, और वहीं पर रास किए थे, नृत्य किए थे ब्रह्मा की, एक रात्रि तक नृत्य किए। एक रात्रि भगवान ने काल की गति को रोक दिया, याद रखिए, ब्रह्मा की रात्रि, हमारी रात्रि तो 12 घंटे की होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है, ब्रह्मा जी के एक दिन का होता है अवधि 1000 चतुर्युग होते हैं। ये आपको वर्णन किया गया भागवत 8वें अध्याय में भी वर्णन है, 1000 चतुर्युग की जो अवधि होती है, समय होता है, उसको ब्रह्मा के एक दिन कहते हैं, एक दिन को एक कल्प कहा जाता है, और उसकी अवधि है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, ब्रह्मा का एक दिन। तो उसी प्रकार से उनकी रात्रि भी होती है, तो हम लोग की 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन, तो ब्रह्मा जी की भी रात्रि होती है 12 घंटे की रात्रि। तो उनकी रात्रि सोची 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की वो रात्रि थी। भगवान ने जिस रात्रि को रास किया वो ब्रह्मा जी की रात्रि थी। तो आप सोचेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, भगवान ने काल की गति को रोक लिया। अब ऐसे आप समझ सकते हैं, ये भगवान की दिव्य लीला है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है। जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, जन्म महोत्सव में सूर्य देवता पधारे, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान आए थे, तो सूर्य देवता 1 महीने तक अयोध्या में भगवान का दर्शन करते रह गए। रामायण में वर्णन है, कहते मास दिवस कर दिवस वा भा, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि होय। 1 दिन 1 महीने का हो गया, तो इसमें जोग माया की लीला थी, भगवान जोग माया का सहारा लेते हैं। 1 महीने का दिन होगा, ये आप अपनी अपनी कल्पना से आप सोचेंगे, भौतिक आप हैं तो अपनी भौतिक इंद्रियों से सोचेंगे ये कैसे 1 महीने का दिन कैसे दिन का हो सकता है। भगवान की जो जोग माया है वह असंभव को संभव बनाती है, और संभव को भी असंभव बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए तो उसका नाम जोग माया है। अघटन घटी पटेसी बोलते हैं, वो भगवान की लीला में सहयोग करती है। जैसे आप ये सोचेंगे ये भगवान की लीला, जैसे पीपल का एक बीज है, चाहे बरगद का एक बीज है, कि बीज कितना छोटा है, लेकिन उस छोटे से बीज में सोची कि उतना बड़ा बरगद समाया हुआ है, उसके अंदर प्रविष्ट कराए हैं, सोचिए कैसे। अब उसका दर्शन करेंगे, रोपिए तो देखिए कितना बड़ा पेड़ निकलता है। तो भगवान की जोग माया कुछ भी कर सकती है। 12 महीने माने, कहने का मतलब अहोरात्रि, मतलब भगवान जो ब्रह्म की रात्रि थी, 1 रात्रि तक भगवान वृंदावन में रास किए, तो आज भी रास हो रहा है, लेकिन हम सोचेंगे 12 घंटे की, अपने हिसाब से आप सोचेंगे, लेकिन वो ब्रह्मा जी की रात्रि थी 12 घंटे की। तो भगवान की लीला में देखिए शिव जी भी भाग लेना चाहते हैं, शिव जी भी भाग लेना चाहते, वो भी भगवान की रास लीला देखने के लिए उत्सुक थे बंसीवट पर, जिनका नाम गोपीश्वर पड़ा है, शिव जी को गोपीश्वर नाम से भी हम पुकारते हैं। तो याद रखिए ये बंसीवट के पास ही गोपीश्वर महादेव जी हैं, तो वो भी भगवान की रासलीला में भाग लेना चाहते थे, तो वो भी वहां पर गए भगवान रासलीला में भाग लेने के लिए। तो उनकी इच्छा थी कि हम भी वो वो भगवान का सदैव चिंतन करते रहते हैं, जप करते रहते हैं महामंत्र का, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और वृंदावन में जब गए तो वृंदावन गए तो वो उस लीला में भाग लेना चाहते थे, तो वृंदावन की जो परिक्रिया गोपियों की जो परिचारिका है उनको रोक दिया। और श्री कृष्ण को बोले कि श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई पुरुष नहीं जा सकता है, पुरुष का निषेध है, किंतु शंकर जी कम मानने वाले हैं, तो उनसे परिचय पूछे कि हम कैसे इसमें प्रवेश कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको गोपियों की पूर्णमासी जी की सहारा लेनी पड़ेगी, आप उनका सहारा लीजिए। तो पूर्णमासी जी आए जो जोगमाया है, उनके पास गए तो जोगमाया जी ने क्या किया, उनकी आराधना करके उनको प्रसन्न किए, और तब जोगमाया का दर्शन हुआ। तब उन्होंने कहा यदि आप राष्ट्रीय में भाग लेना चाहते हो तो चलो इस ब्रह्मकुंड में स्नान करो, एक ब्रह्मकुंड सरोवर है उसमें स्नान कराई, और स्नान करने से गोपी रूप में शिव जी परिणत हो गए, गोपी बन गए, स्त्री रूप में आ गए आगे, और ले जाकर को उनको उस बंसी बैठ के एक कुंज में बैठा दी, कि यहां आप बैठिए और यहीं से आप दर्शन करिएगा, यहीं से आप देखिएगा, बैठा करके फिर पूर्णमासी आ जाती है। अब रासलीला का समय आया, भगवान का रास करने का जब समय आया रात्रि में, तो हुआ क्या, तो गोपियां आती हैं तो वहां आनंद नहीं आ रहा है गोपियों को, कहते यहां कोई लगता है कोई अपरिचित व्यक्ति का वास, कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया है जिसके चलते रास में विघ्न आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, वो है कौन, सब खोजने लगी कौन है। खोजते खोजते निकुंज में पहुंची, जो निकुंज में वहीं पर वो गोपी बैठी हुई थी, वो तो अपरिचित गोपी थी, तो उनको पकड़ती है उस गोपी को, वही शिव जी है, पकड़ती है पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम्हारे पति का क्या नाम है, तुम्हारे ससुर का क्या नाम है। चुप, क्योंकि पूर्णमासी जी ने उनको ये परिचय दिया नहीं था, ये परिचय नहीं बताया था। तो अब गोपी तो उसकी अकबक बंद हो गई, शिव जी का अकबक बंद हो गई, तो अब मैं क्या बताऊं, रोने लगी, नहीं बता रही है। तब गोपियों ने क्या काम किया, याद रखिए, गोपियों ने क्या काम किया कि उसको, गोपी तो रोने लगी, बोले कि तुम कहां से आई, नाम गांव बताओ। जब गोपी रोने के अलावा कुछ नहीं बोल रही थी, तब गोपियों ने उसको गालों में गुलजा मारा, ऐसे बोलते हैं गालों में, इसे गुलजा इसको बोलते हैं, गाल को मार करके पूरा फुला दिया, तुम कहां से आ गए, इसमें कहां से प्रवेश किए, तुम्हारे आने से आनंद नहीं हो रहा है, तुम्हारे आने से प्रवेश करने से आनंद नहीं आ रहा है, कीर्तन में रास में, माने वातावरण ये अलग दिखने लगा, माने तुम इसके लायक नहीं हो, कहने का भाव यह है। अपरिचित होकर के गए थे शिव जी ने, और जो पूर्णमासी जी ने, जो माया ने नाम, कुछ गोपी का नाम भी नहीं बताया था, तुम्हारा नाम क्या पूछे ना, तब पूर्णमासी जी आती हैं और भगवान के कृपा गोपियों से भी बताती हैं कि मैंने इनको इस स्थान पर लाई है, और भगवान तो भी बताती हैं, जब वो मार खा जाते हैं तब पूर्णमासी जी उनको परिचय देती हैं कि मेरी कृपा से यहाँ आई हैं। तो भगवान भी आते हैं और तब शिव जी को भगवान याद रखें, कहते हैं कि भगवान देखिए अपने भक्तों के प्रति दयालु होते हैं, तो उनकी दुर्दशा को देख करके पूर्णिमा जी द्रवित हो जाती हैं और वहां पहुंचकर गोपियों को से अनुरोध करती हैं, ये मेरी कृपा पात्र गोपी, कृपा पात्री गोपी है, इसलिए आप लोग कृष्ण के सहित इनके ऊपर कृपा कीजिए। तो पूर्णिमा जी की आंतरिक अभिलाषा को जानकर भगवान कृष्ण ने उसका नाम, माने शिव जी का नाम, उस गोपी का नाम गोपीश्वर रखे, भगवान ने नाम रखा, उनका नाम क्या है, गोपीश्वर। तो गोपीश्वर महादेव जी वहां विराजमान है बंसीवट के निकट, नाम दिया और कहा कि तुम्हारी, और आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी कृपा के बिना कोई भी साधक इस वृंदावन में विशेषकर मेरी मधुर लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये विशुद्ध कृष्ण प्रेम देने वाले गोपीश्वर महादेव जी हैं, वे वहां पर भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने में सहायता करते हैं, तो इसलिए भक्त वहां जाते हैं तो गोपीश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर भगवान की लीला स्थलियों में प्रवेश करते हैं। तो गोपीश्वर महादेव जी, शिव जी भी वहां, कहने का मतलब गोपी बन करके गए थे लेकिन मार तो खानी पड़ी, लेकिन शिव जी गोपीश्वर महादेव जी भक्तों को, वो भी भगवान की लीला में सहायता करते हैं। अगर आप उनसे भक्ति मांगिए तो आपको भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन शिव जी यात्रा की 60,000 वर्ष तप करके भगवान कृष्ण को प्राप्त किए थे और पहले एक मुख था, पंचमुखी बने थे, कह कि एक मुख से गुणगान गाने से हमारी तृप्ति नहीं होती है, जिसे ब्रह्मा को चार मुख है वैसे हमें भी चार मुख और दीजिए। तो भगवान ने कहा तथा अस्तु, तो चार मुख, पहले एक मुख, चार मुख और प्रदान किए पंचमुखी, तो पांच मुखों से शिव जी भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अब देखिए, तो भगवान की रासलीला में किसी का प्रश्न नहीं हो सकता। अब देखिए, साक्षात देखिए, आज भी लीला हो रही है, भगवान की नित्य लीला होती है, गोलोक धाम में भी नित्य लीला चल रही है और वृंदावन में आज भी नित्य लीला होती है। हम सभी भक्तगण वृंदावन पहुंचते हैं, आप सभी जाते हैं, तो वृंदावन एक निधिवन है जहां बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल ये वृंदावन जहां प्रकट हुए, आज भी वहां भगवान रास करते हैं निधिवन में, आज भी रास करते हैं निधिवन में। निधिवन की ऐसी व्यवस्था है कि अगर वहां देखिए उसे वन में, निधिवन में जो वृंदावन के बांके बिहारी जी हैं वो उनकी प्रकट स्थली है, तो स्वामी हरिदास जी उनको प्रकट कराए थे, तो आज भी भगवान उस निधिवन में लीला करते हैं। तो संध्या समय जब संध्या होती है, सूर्यास्त हो जाता है, तो वहां कोई बंदर, भालू, कोई भी पक्षी, कोई भी जीव वहां नहीं रहते, सब बाहर आ जाते हैं। अगर कोई वहां रुक जाए जिद्दवश, तो वर्णन मिलता है कि तो वो पागल हो जाएगा, उसकी बुद्धि चकरा जाएगी, वो पागल हो जाएगा, नहीं तो कि तो उसका शरीरांत हो जाएगा। तो कोई ऐसा जिद्दवश किए था तो उसकी समाधि बनी। अगर कोई भी जिद्दवश जाए तो, क्योंकि उसके लायक नहीं है, आप उसके लायक नहीं है, आप गोपी का मतलब शुद्ध प्रेम से बनी हुई बना हुआ हृदय, जिसके अंदर तनिक भी विषय की कामना नहीं, वो गोपी है। तो निधिवन में आज भी भगवान रास करते हैं, तो वहां रात को कोई नहीं ठहरता, याद रखिए, कोई भी अगर जाएगा तो पागल हो पगला जाएगा एकदम। और इसलिए दिव्य उच्च स्तर के प्राणी वहां प्रवेश करते हैं, लीला भगवान की होती है, वहां दर्शन करते हैं, आज भी जाकर के आप देख सकते हैं। और भगवान की भी कुछ ऐसी वहां अनेक प्रकार की सामग्रियां रखी जाती है श्रृंगार की और भी, तो वहां भी वो सामग्री आपको दिखाई देते हुए मिलेंगी, वो निधिवन है याद रखिए, और लीला आज भी भगवान की हो रही है। तो रास लीला में कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, और सर्वोच्च लीला है रास लीला। अब आगे की तरफ हम आपको ले चलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये जब गोपियां गीत गाए, विरह की गीत गाई, अंतिम गीत है, 19 श्लोकों में है, हिजगृहस्थ राम रूप प्रभु जी ने वर्णन किया था, यत्ते सुजात चरणम मुरहम अस्तनेशु, वर्णन है, हे प्यारे, गोपियां गा रहे हैं, ये श्रीमती राधा रानी जी बोल रहे हैं, हे प्यारे तुम्हारे चरण कमल से भी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर अस्तनों पर डरते डरते बहुत धीरे से रखते हैं, कहीं उनमें चोट न लग जाए। उनकी चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो, क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट नहीं लगती? आपके पैरों में पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम तुम्हारे हैं। जैसे चेतन महाप्रभु कहते हैं, आस लिश्य वापाद्रताम पिनष्टुमाम, कहते हैं ना, ये ऊंच कोट का प्रेम है, हमारे सर्वस्व तुम्हें है,
तो याद रखिए, कृष्ण के सर्वस्व, कृष्ण के सर्वस्व, कृष्ण के खजाना, कृष्ण के प्राण, कृष्ण की आत्मा वो है श्रीमती राधा रानी। और फिर राधा रानी के सर्वस्व धन सर्वस्व भगवान कृष्ण है। उनके बिना वो नहीं रह सकती, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम से बनी है। राधा रानी के प्राण कृष्ण के प्राण राधा रानी है, राधा रानी के प्राण भगवान कृष्ण है। दोनों में अनुनाश्रय संबंध है, विषय का गंध नहीं है, सरोज प्रेम की बात है। गुटियां इस प्रकार से विलाप करने लगी, रो रहे हैं। तो अब देखिए, अब हम उस पॉइंट पर लाते हैं। देखिए समय बहुत कम रहता है, समय बहुत कम रहता है, लेकिन शॉर्टकट में हम आपको इस अध्याय का स्थान सुना देते हैं। पुनः मिलाप हो रहा है भगवान का, भगवान भाव से मिलते हैं। गोपियों का भाव देखिए, वीरा भाव है, वीरा भाव। अच्छा, वीरा भाव में देखिए भगवान, ये भगवान की वाणी है कि जो जिस भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उस भाव से उसके सामने प्रकट होता हूँ। गोपियों का वीरा भाव, वीरा भाव को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया। आपकी भावना क्या है, आपके आचार विचार क्या है, संबंध से भाव उत्पन्न होते हैं। तो गोपियां भगवान को पति मानती हैं, और इनकी मनभावना, गोपियों की मनभावना को भगवान ने देखा, और उसने देखा कि गोपियों की जो मनभावना है बहुत शुद्ध भावना है, व्याग्र है मेरे लिए, तड़प रही है। तो इस प्रकार गोपियों को मनभाव को दे करके कृष्ण गोपियों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, और वे पीतांबर धारण किए हुए थे, बहुत सुंदर उनका स्वरूप था, मदन मोहन थे, कामदेव के भी सौंदर्य को मंत्र मोहने वाले थे, इतना आकर्षक उनका स्वरूप है भगवान का। जैसे ही गोपियों के मध्य भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो मैंने लिखा, तो वहां वर्णन है कि प्रकट हुई भगवान, जब ही प्रकट हुए सारी गोपियां जो विरह में रो रही थी, ऐसा लगा उनको जैसे कि मृत शरीर में प्राण संचारित हो गया है। भगवान को प्रकट हुए सारी गोपियां घेर करके खड़ी हो गई, खड़ी हो जाती है वहां पर। तब तो होगा बंसीवट पर भगवान रास किए थे, याद रखिए, वहां घेर कर खड़ी हो गए। तब मानो एक गोपी कृष्ण के हाथों को सहला रही है, हाथ को पकड़ लिया, एक गोपी उनके चरण को सहलाने लगी, एक गोपी टेढ़ी नजर से ऐसे देख रही है, देखिए क्रोध का रस ले रही है, देखिए क्रोध देख रही है, मानो वह कृष्ण को खा जाएगी। तब तो भगवान बोलते हैं, ऐसी क्या देख रही हो, ऐसा क्या देख रही हो। एक चीज याद रखिएगा, ये हाई लेवल का चीज है। अगर कृष्ण को कोई व्यंग मारे, अगर कृष्ण को कोई गाली दे, हैं, वो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पंडा जगन्नाथ जी को गाली देते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है, याद रखिए। तो भगवान को भी अगर कोई व्यंग मारे, तो व्यंग मार रही है, हाई लेवल का चीज है, व्यंग मार रही है। प्रेमिका यदि प्रेमी को अपना व्यंग मारे, तो उसमें भी प्रेमी को बड़ा आनंद आता है, दोनों तरफ से आता है। तो आवेश, तो देखिए क्रोध रस का आनंद ले रही है, ऐसे तिरछी चितवन से ऐसे देख रही है। आप हम लोगों को मतलब क्या कह रही है, भगवान लोग क्यों बोलती है। तब गोपियों ने कहा, गोपाल कृष्ण एक बात बताओ, वो प्रश्न करती है। गोपियों का एक प्रश्न है, इसमें वर्णन किया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गोपियों का प्रश्न देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। ये दूसरी प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते, बताओ तीनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और जो दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते हैं, इन तीनों में से कौन है सबसे बड़ा प्रेमी। तो भगवान उत्तर देते हैं, बड़ा सुंदर भगवान उत्तर दिए, और भगवान बताते हैं कि तुम लोगों के बीच से मैं क्यों अंतर्धान हुआ था, क्या कारण था। भगवान ने कहा कि प्रेम करने के बदले जहां प्रेम किया जाता है गोपियों, वहां स्वार्थ होता है प्रेम। हाँ, स्वार्थ होता है प्रेम नहीं, प्रेम नहीं करने वालों से भी जहां प्रेम किया जाता है वहां प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। जैसे जैसे कहते हैं कि जो प्रेम नहीं करते हैं और प्रेम करने वालों से जो प्रेम नहीं करते हैं, तो कहते हैं इस प्रकार के वो बताते हैं, स्मरण है कि वे जो दो प्राणी हैं वे अलौकिक प्राणी हैं। जैसे माता पिता, एक और उदाहरण देते हैं कि उसके प्रेम न करने वाले और प्रेम करने पर भी प्रेम न करने वाले, प्रेम करने पर भी प्रेम करने वाले, प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करने वाले, ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अलौकिक प्राणी होते हैं। कौन कौन? एक तो है भगवान, अकारण कारण रहित दयाल होते हैं। दूसरे माता पिता, माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, वे बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। उनका जो प्रेम होता है स्वार्थ से परे होता है, लेकिन संसार के लिए जो प्रेम करते हैं वे सब स्वार्थी होते हैं। तो कहेगा इसके बाद और भगवान कहेगी, जो प्रेम, तीसरी बात यहां और भी गोपियों से, जो प्रेम करने वालों से कहते हैं कि ये जो प्रेम करते हैं माता पिता, जो बच्चों से प्रेम करते हैं वहां बच्चों को सुख मिलता है। तो यहां पर देखिए ये बातें कही गई है, हाई लेवल की बातें होती है। जैसे भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें आचार्यगण वर्णन करते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा है, शुद्ध प्रेम की बात कही जा रही है, जो अपनी माँ के वक्ष स्थल पर छाती पर खेलता है, स्तन का पान, दुग्ध का पान करता है, माताएं मुख चुमती हैं, बच्चा भी चुमता, उसमें जो सुख है कहते हैं, उसमें जो आनंद है वो शुद्ध आनंद है। उसमें माता का कोई स्वार्थ नहीं है, शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम से बच्चे का उसी प्रकार से वही सियाने हो जाने पर वैसा नहीं कर सकती है, उसे विषय का भाव आ जाएगा। तो यू भगवान का यहां गोपियों के साथ जो रास है, जो नृत्य है, जो यहां क्रोध है, ये सब उच्च स्तर का है, तो इसमें विषय का गंध नहीं है। तो कहते कि चार लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रेम करने वालों से, हाँ, थोड़ा सा रुक जाए, भगवान कहते हैं कि जैसे, हाँ, जो प्रेम नहीं करते हैं और न करने वालों से भी जो प्रेम नहीं करते हैं, जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते हैं, न करने पर भी प्रेम नहीं करते हैं, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति चार प्रकार के होते हैं जो प्रेम नहीं करते हैं। एक एक बोलते हैं कि मेरे दृष्टिकोण में चार हैं, जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और न करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। तो चार लोग हैं, कौन कौन भगवान बता रहे, इसी श्लोक में वर्णन है, याद रखिए अंतिम जो श्लोक है ना उसमें वर्णन है, वो नहीं, इस बीच से कई श्लोक है उसमें सब कुछ आता है। पहला है आत्माराम, एक आत्माराम होते हैं, दूसरा पूर्ण काम होते हैं, तीसरा कृतज्ञ होते हैं, चौथा गुरु द्रोय होते हैं। ये चार प्रकार के लोग होते हैं जो प्रेम करने वालों, न प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं। जैसे आत्माराम है, आत्मारामस्य मुनियो, जो आत्माराम होते हैं, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है कि आत्माराम जो होते हैं, अपने जो आत्मा में रमण करें उसको हम आत्माराम कहते हैं। भगवान भी आत्मानंदी है, अपने रमण करते हैं, सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं, वे किसी से प्रेम नहीं करते हैं। एक पूर्ण काम होते हैं, जिनकी सारी जो सिद्धियों से परिपूर्ण है, जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, वो किसी से प्रेम नहीं करते। अच्छा, और चौथे हैं कृतघ्न, जो किए गए प्रेम को नहीं जानते हैं, प्रेम करते हैं लेकिन किए गए प्रेम को नहीं जानते, उसको कृतघ्न कहा जाता है। और चौथे हैं गुरुद्रोह, गुरुद्रोह का मतलब है गुरु से द्रोह नहीं करना है, कहते हैं कि गुरुजनों के शत्रु को गुरुद्रोह कहा गया है, जो तड़पाते हैं, जो तड़पाते हैं, जैसे आपने तड़पाया, हम लोगों को तड़पाया, बहुत रुलाया, पहले तो प्रेम करके आप अदृश्य हो गए, इसके बाद में आपने रुलाया, तड़पाया, तो आप तीसरे और चौथे नंबर के लगते हैं, आप कृतज्ञ हैं और गुरुद्रोह हैं, आप तड़पाने वाले, हम लोग को तड़पाया। तब भगवान अब उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर भगवान देते हैं, याद रखिए, उत्तर सुनिए भगवान का। भगवान, हाँ गोपियां बोलती हैं आप तो बिल्कुल तीसरे नंबर के ही दिखते हैं, चौथे नंबर के कृतज्ञ, माने किए गए उपकार को जो नहीं जानते। हम तो आपसे प्रेम किया, लेकिन हम लोग आपसे प्रेम किया, लेकिन आप लोग हमको छोड़, आप हम लोग को छोड़ करके अंतर्धान हो गए, तड़पाए, ऐसा क्यों किया? अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, आज की प्रश्न का यही सार है। गोपियों ने कहा हमने सर्वस्व छोड़ दिया, हम सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आ गई, आप वृंदावन में कहीं छुप गए, रुलाया, ऐसा क्यों किया? तब भगवान कहते हैं, भगवान कहते देवियों देखो, मैं ये भगवान की परिभाषा है, चाहे भगवान का ऐसा प्रेम है, आप सभी जानते हैं भगवान अत्यंत निकट भी हैं, अत्यंत दूर भी हैं, अत्यंत माने पास भी हैं और दूर भी हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं, बाहर भी हैं भीतर भी हैं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, गोपियों मैं तुम लोगों के प्रेम को अधिक प्रगाढ़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच से मैं अंतर्धान हो गया। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति धनी है, उसका धन खो जाए तो उसे लूट जाए तो उसके लिए वह तड़पेगा, खोजेगा, चिंतन करेगा इसके लिए, यदि वो फिर पुनः खोजने का प्रयास भी उसी प्रकार से खोजने का प्रयास करेगा, तो मैं तुम लोगों के प्रेम को बढ़ाने के लिए, भक्ति को और प्रेम को और भी सर्वोच्च गढ़ा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच से अंतर्धान हो गया, मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं, मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं। और जैसे धनी व्यक्ति का धन खो जाता है और पुनः प्रयास करता है तो उन्हें मिल सकता है, तो मैं आप लोगों का सर्वस्व हूं और आप लोग भी हमारी सर्वस्व, हमारे धन है, मैं आप लोगों का धन हूं, आप सब कुछ छोड़ करके हमारे पास है, ये मुझे पता है, पता है। जैसे आप लोग मुझसे प्रेम करती हैं वैसे हम भी आपसे प्रेम करती हैं, वास्तव में प्रेम करना तो आप सभी जानती हैं, तो आप लोगों के बीच से मैं इसीलिए अंतर्धान हुआ था कि आपका चिंतन बढ़े और आप हमारे वीरह वेदना में रोएं, और वीरह वेदना जो होती है तो कहते हैं कि भगवान की वीरह वेदना से मैं अपने भक्तों की रुलाई को, उसकी सर्वोच्च भावनाओं को दे करके मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो आपने लोगों ने जो गोपी गीत गाया, वीरह का जो गीत गाया, आपकी शुद्ध भावना थी और मैं आपके सामने प्रकट हो गई। तो मैं, भगवान कहते हैं कि मैं जिसकी जैसी भावना होती है उस भावना के अनुसार मैं दर्शन देता हूँ, आपकी शुद्ध भावना दे करके, गोपी गीत सुन करके मैं आपके बीच में प्रकट हो गया हूँ। अब जब इस प्रकार भगवान कहे कि गोपियों आप हमारे प्राण हैं और आप लोग जैसे हमसे प्रेम करती हैं वैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ करके हमको चयन किया, हमारी आपने, बता रहा हूं, हाँ ठीक है, ब्रह्म विराम दे रहा हूं, तो आप लोग हमारी, मैं आप लोगों के प्रति रेड़ी हूं और उस रेड़ी से मैं उत्तरी नहीं हो सकता, याद रखिए मैं रेड़ी हूं, आप लोगों ने जो मेरी सेवा किया है, सब कुछ त्यागा है, त्याग करके मेरे शरण में आई है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, मैं आपका रेड़ी हूं। अंतिम श्लोक में यही भगवान बताते हैं, रेड़े हूं माने भगवान का जो सेवा करता है, पुकारता है, भगवान उसके रेड़ी बन जाते हैं, याद रखिए, खरीदार बन जाते हैं। तो आप ही हमारे, हमको मुक्त कर सकती हैं, भगवान हार जाते हैं यहां पर गोपियों के आगे, कहते हैं आप लोग जैसा मुझे प्रेम करती हैं वैसा कोई नहीं प्रेम करता है, आपका स्रोत प्रेम है, आपका रीढ़, आपके प्रेम का मैं रेड़ हूं, आपको मैं काफी मानता हूं, आप लोगों को, आप मेरा हृदय है बिल्कुल, आपको छोड़ करके मैं कभी जा नहीं सकता, मैं तो आपके पास में रहता हूं। तो भगवान भक्ति के बस में है, गोपियों का सर्वोच्च प्रेम है और गोपी भावों को देख करके भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, और उनके बाद फिर भगवान, अब देखिए कहते हैं भगवान, अब मैं आपकी वंशा को पूर्ण करता हूं, तो भगवान रास लीला करते हैं, रास महाराज करते हैं, एक एक गोपी के बीच एक एक कृष्ण है, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, हजार गोपियों के एक बीच महाराज होता है, जिसको महाराज कहते हैं। कल के प्रसंग में आप जिसका क्लास होगा उनके मुख से इसको श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान रास, राधा रास बिहारी जी की जय, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद की जय, हरे कृष्ण। आज भक्ति चारू महाराज जी का व्यास पूजा समय भी हो गया, समय देखिए कम रहता है, सॉरी क्षमा करेंगे आप।